Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ कुमार विजय। विजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
थैंक यू मनोज। Domestic benchmark indices Sensex and the Nifty surge over 1%. NSE crosses record 10 crore unique registered investor base and oil prices set for 3% weekly gain.
घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की सक्रिय लिवाली से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। एनएसई का यूनिक रजिस्टर्ड निवेशक आधार 10 करोड़ से ऊपर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम साप्ताहिक आधार पर 3% से अधिक बढ़े। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक लाभ में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 820 अंक यानी 1.04% बढ़कर 79,706 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 250 अंक यानी 1.04% की ही बढ़त के साथ 24,367 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर नजर डालें तो वहां भी निवेशकों की अच्छी खासी लिवाली रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.21% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.79% की वृद्धि हुई।
Indian benchmark indices, the Sensex and the Nifty surged over 1% today, driven by a global market recovery. The Sensex, which tracks 30 companies, was up 820 points or 1.04% to close at 79,706. Meanwhile, the Nifty 50 gained 250 points or 1.04% again to end at 24,367. The broader markets also showed strength, with the mid-cap index soaring 1.21% and the small-cap index rising by 0.79%. In the Sensex index, 28 out of 30 companies traded in the positive territory. The top gainers today were Tech Mahindra, 2.74% up, Tata Motors, 2.51% up, and Mahindra & Mahindra, 2.46% up. Conversely, the major laggards were Kotak Mahindra with a loss of 0.20% and Sun Pharma, which lost 0.01%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors traded in gains, with IT rising 1.59%, consumer discretionary rising 1.57%, and realty sector gaining 1.56%. The overall market breadth at the BSE was positive. Of 4,006 companies, shares of 2,330 companies advanced, shares of 1,579 companies declined, and shares of 96 companies remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया थोड़ी सी मजबूती के साथ 83.95 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.21 पर कारोबार कर रहा था।
Mr. Vijay, if you look at the markets today, we see that, of course, driven by the global cues and the markets, both Sensex and the Nifty, you know, they closed 1% up. So, apart from the fact that, of course, we had good data coming out of the U.S. Jobs market, the jobless claims came out low, what were the other factors that you think which contributed to this positive trend in the markets?
See, first thing is that our domestic market has got very good fundamental strength. Inherent strength is really very fine, resulting into better market part. Market had been trading for a good number of days above 80,000. And this has been a kind of, down because of some global news, which had created not only in India, even throughout globe, market had gone down. So now the clue was from Japan. And since it was from Japan, ultimately, Japan has really put a hold on that kind of a rate hike, and that resulted into whatever the fear related to yen, carry trade was there. So that message has been through that right now it is not going to be that way. So it is going to be a better opportunity outside. A strong fundamental and key indicators inside, resulting into market is going back to its own position.
Now, you mentioned, of course, Japan, that Bank of Japan last week it raised, its interest rates. And like we were discussing, that it's the global market recovery, which is, reflecting in the Indian markets as well. The point is that we are living in a global economy, right? So last week with Japan, Bank of Japan raising the interest rates, and with the kind of data that was coming out of the U.S., Sensex went down more than 2,000 points. And, 2 days later, 3 days later, something else happened and the markets recovered. So in this kind of a volatility, when markets, because of various reasons, internal as well as external reasons, the markets go up, then 2 days later, the markets, go down. What is a common investor supposed to do?
Common investors, see, basically, whenever you say word investor, they have to be maintaining themselves in the market. What is important is undoubtedly the India's fundamental is really very in place. Whatever the time being, a small kind of a, trigger could be there for a immediate transitory exercise. But in long run, Indian market has got a strength. And it is not only through the kind of a growth rate or related to most of the parameters. Some of the parameters, if I share with you, even consumer-related parameter, two-wheelers, tractor, agro-based related parameters, you'll find out all these parameters are really indicating that India's growth is getting deep grounded. So it is not something like a small and some, short-lived trigger is there. It is going to be on a longer basis. So these are the factors which is making India's economy strong. And as we know, that's why you will find out even today's growth, it is not only in a large cap, even medium cap, yes, small cap, irrespective of the sector. Across the spectrum. That growth has been.
विजय जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो यानी कह लें कि ग्रोथ मोमेंटम है वो ग्रामीण स्तर पर, यानी जो कमर्शियल वाहन जिनको हम कहते हैं, ट्रैक्टर की खरीदारी बढ़ रही है या कह लें दोपहिया वाहनों की खरीदारी बढ़ रही है, इस तरह से किन किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि ये जो हमारी यानी विकास की रफ्तार है वो गांव तक या कह लें छोटे शहरों तक, नगरों तक पहुंच रही है और उसका लाभ पूरी अर्थव्यवस्था को हो रहा है, जो शेयर बाजार में उछाल को दर्शा रहा है?
जैसे आप बताए, दो तीन फिगर मैं आपको बताऊंगा। एक तो जैसे ट्रैक्टर का मैंने बोला ही, करीब करीब 3% के आसपास का, 3.6% इस पर जून में इनका सेल्स ग्रोथ रहा है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है एमजी नरेगा का, और नरेगा के फिगर में देखा गया है पिछले 2 महीने में सब्सटेंशियल डिमांड डिक्रीज हुआ है। अगर मैं पर्टिकुलरली फिगर बताऊं तो 21.7% जून में डिमांड घटा है एमजी नरेगा में, एंड 19.4% जुलाई में, 20% अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए। ये कब घटता है? जब लोगों को अदर अल्टरनेट जॉब ऑलरेडी अवेलेबल है, इवन इट मे बी फार्म रिक्वायरमेंट। आपके अगर खेत में ही काम है, आपको फुर्सत नहीं है कि आप आके अपने आप को एक नरेगा में आप जॉब मांगेंगे, या कोई दूसरा प्रोजेक्ट उस इलाके में रन कर रहा है जहां आपको ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी अर्न करने का मिला हुआ है। ये एक सिग्नल है जो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रेड रूरल लेवल तक चला जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि जब आप पूरे के पूरे जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं तो वाइड स्पेक्ट्रम में, वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम में वो बाहर आता है। एंड टू व्हीलर या ट्रैक्टर, इन सबको एक आप इस मान में ले सकते हैं कि ये वो इंडिकेटर है जो आने वाले टाइम में इंडिकेट करने जा रहा है, उसको लीड इंडिकेटर कहते हैं। और लीड इंडिकेटर यह है क्योंकि आप ट्रैक्टर जब आ रहा है, डिमांड हो रहा है, सिमिलरली बैंक लोन, बैंक लोन का भी जो क्रेडिट देखिएगा, क्रेडिट इंक्रीमेंट इंडिकेट कर रहा है कि रूरल क्रेडिट भी इंक्रीज कर रहा है। क्रेडिट कब इंक्रीज करता है? जब लोग लोन ले रहे हैं, और लोन लेंगे तो कुछ न कुछ काम तो करेंगे ही, वो तो आगे बढ़ेंगे। दैट इज वॉट इज इंडिकेटिंग कि एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है।
यहाँ पर विजय जी, यानी आपका ध्यान मैं आरबीआई की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। आरबीआई ने हाल में कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी रिकवरी को लेकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि उनका जो रुझान या प्रवृत्ति दिख रही है वो कहीं ना कहीं शंका की ओर ले जा रही है। इस पर क्या राय लेना चाहिए?
देखिए, आरबीआई का जो संशय है वो सही है, वो गलत नहीं है, और इसके कई कारण है। और इसमें जब सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो पुराने तरीके से अगर किसी के मन में ये बैठ जाए कि अगर मैं ना चुकाऊं तो भी हमारा ये माफ हो जाएगा, तो ना चुकाने की प्रवृत्ति जगती है। अगर किसी को आसानी से मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है उसमें कि अगर जब कभी भी सरकार ऋण माफ करती है, चाहे किसी भी दबाव में आवे, चाहे जो भी उसके ऊपर हो, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो माफ करती है तो एक ये संदेश भी जाता है कि चिंता ना करो, फिर माफ हो जाएगा। और जब फिर माफ हो जाता है तो यहाँ क्या होता है कि जो बोरोअर है, जो किसान है, जो ऋणी है, वो उसका ऋण लेने की क्षमता पुनः स्थापित हो जाती है। ये कॉरपोरेट लोन में नहीं होता है। कॉर्पोरेट लोन या पर्सनल लोन, अगर मैं लोन लूं और ना चुकाऊं, और मान लीजिए एक्सक्यूज भी कर दिया गया, लेकिन मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, ये एग्री लोन के साथ नहीं होता है। उनका अगर सरकार ने माफ किया तो वापस वो फिर से लोन लेने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कह सकते हैं कि ध्यान आकर्षण है, और ये आज की बात नहीं है, मैं 1980s लेट 80s की बात करता हूं, जब आरएन मल्होत्रा हुआ करते थे गवर्नर, उस समय से ये रेज होता चला रहा है कि हमें कब तक इस तरह से एवरग्रीनिंग ऑफ लोन करते रहना होगा, हमें कुछ न कुछ दूसरा उपाय करना होगा। यहां दूसरी बात भी है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में बैंक एक तरीके से इंसुलेट कर सकता है अपने आप को, वो अपने आप को बीमित कर ले, एक इंश्योरेंस अपना उस लोन के अगेंस्ट में ले ले, और इंश्योरेंस जो है वो फिलहाल उनको एक सुरक्षा देगा लोन के ढूंढने के बाद।
यानी जो बैंकों का एनपीए बढ़ने के आसार है या आशंका है वो घट जाएगी,
घट जाएगी।
विजय, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, मनोज जस्ट मेंशनड आरबीआई, एंड आई जस्ट टेक इट, ही वाज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग। I want to draw your attention to the fact that the RBI MPC ended yesterday. Repo rates have been kept unchanged. So the point thing here is that, and of course, Governor Shaktikanta Das has listed out a lot of reasons, you know, that he is also talking about the fact that there is, you know, the rates have been kept unchanged amid risks from higher food inflation. Now, we see that the Bank of England, just last week, it had cut down rates. US Fed has already indicated on, you know, when it had the meeting on 30th and 31st July that it's likely to begin the rate cuts from September onwards. So what is it that's keeping RBI, you know, because the governor has not committed anything on this. What is the rationale of the RBI in, you know, not giving away the time, you know, the timeline or keeping the rates unchanged?
See, even if you look into the study's result, which has been there from the MPC committee has not unanimously decided for this, you know, maintaining
that. It's a
4-2 decision. Here I'd like to say that they are concerned about food inflation. And food inflation, actually food item is, you know, covering approximately 46% of the total weight. And even Dow fuel is there, another item, but fortunately fuel is right now not into inflationary pressure.
Yes.
So food item we'll be talking about, which has got a very serious issue. And really that inflation is higher side. Now concern is, we should have ignored that, and we should have looked upon how the, you know, by little decreasing the rate, economy should have got certain boost. That is a one opinion. That is the very important opinion. But why they have not done it? Because of one strong fear, which Governor Ji has already explained in his speech, that if for a longer period this inflation continues, then it will penetrate, it will percolate to core inflation
as well. Yeah.
Core inflation. let's say wage has to be compulsorily made high. And when wage will be high, then it will further not got revised in the downside. Then it will affect the higher inflation and that stickiness will be there. To avoid that stickiness, they are right now hawkish in nature and then trying to monitor in such a way that wait and watch situation is there. But certainly I am sure to give the momentum to economy, which India needs it to achieve its, target of that, Viksit Bharat in a long run and near future to become a second and third and fourth position, fourth banega, then third. Yes. And that is possible only when some booster to the growth will be there. Here, I think RBI is little taking relaxation on the government account, that government is taking care of the growth part and RBI is taking care that price stability should be maintained.
But would you say that RBI is actually, doing a very fine and very, the balancing act the RBI is doing? Because like you said, it is really worried. The Governor Shaktikanta Das also mentioned food inflation as a very important point that, why the rates are not, being cut right now or why they're not starting this rate cut cycle. So it's actually for the RBI, it's a very fine balancing act to maintain, to be able to bring inflation down to the mandated levels and also, to give momentum to the economy, to give momentum to growth.
See, that is basically conceptually very correct, but I think India needs some more booster also and to have that economic priority and that priority expect something, some kind of a rate cut, because we know that the financial charges are a big signal to the market and which not only influences the public borrowings, even the private borrowings also get influenced because of that.
प्रिय जी, खबरों को हम थोड़ा सा मौसम की ओर लिए चलते हैं. यदि खाद्यान्न की चर्चा हुई, खाद्य मुद्रा स्फीति की चर्चा हुई, तो जो बारिश के अभी तक के आसार या कहले प्रसार रहा है, वह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या दर्शा रहा, और खासतौर से जो एफएमसीजी सेक्टर हैं उनके लिए त्योहारी मौसम में कैसे अवसर बन रहे हैं इस बारिश को देखते हुए?
अभी तक की बारिश को पीछे के तुलना में देखा गया है, 2023 की तुलना में तो देखा गया है कि अच्छी बारिश हुई है और आगे भी जो है साउथ वेस्ट मानसून जिसको कह रहे हैं वो मानसून अच्छे कंडीशन में है और इससे बहुत अच्छी उम्मीद बन रही है कि एग्रो बेस्ड में जो रूरल एरिया की जो बात हम लोग कर रहे थे ग्रामीण में, इसमें जो डिमांड है, कंज्यूमरिज्म है, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को एक स्ट्रांग सपोर्ट करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा.
इसी अच्छे मोड पर आइए श्रोताओं, खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं. आने वाले दिन प्रॉस्पेरस हों, खुशहाली हमारी बढ़े, इस कामना के साथ चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है. निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.22% लाभ के साथ बंद हुआ. हांगकांग के हिंगसिंग में 1.16% की तेजी आई. जापान का निकेई 225 सूचकांक 0.55% लाभ में रहा. वहीं बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.27% घाटे के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां तेजी दिख रही थी. निवेशकों की खरीदारी से फ्रांस का कैक 40 0.52% ऊपर चल रहा था. लंदन के फुटसी 100 में 0.49% की तेजी थी और जर्मनी का डेक्स 0.4% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.
मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट, यूएस स्टॉक्स रैलीड यस्टरडे विद द नैस्डैक एंड एसएनपी 500 बोथ क्लाइंबिंग मोर देन 2%. After a sharper than expected drop in jobless claims calmed concerns about a rapidly weakening labor market, the tech-heavy Nasdaq Composite added 2.87%, while S&P 500 gained 2.30%. The Dow Jones Industrial Average rose 1.76%. Vijay, as we were just discussing, the data coming out of the U.S. is, the jobless claims, it decreased by 17,000 in the week ended August 13th. So, which is good news because, it also kind of calmed the markets as we have seen in terms of the Dow Jones and other indices, they rally. And it also has allayed the fears worldwide that the U.S. economy is slowing down or there's a fear of recession.
See, U.S. is maintaining, they have tried to maintain their inflation very nice and their work on inflation has been really very good. they were trying to look into the labor market also in a very effective way. But last result when had come, it was really very painful. And immediately when they had started talking about cutting the rate and giving more booster to the economy, suddenly one kind of a negative message came and they were on the crossroad what to do next. Now, finally, this week report, that weekly report which has appeared is somehow, you know, you can say consoling report is there, you know, things are not that bad. And that's why you find out this rally which is there, you know, yesterday in the US market. Now, I think even after that, I am little skeptical now. The within 2 months of time, they had started, they had planned to, you know, cutting the rate. But I don't know. They will wait for, they are again hawkish here also, and they will wait for things, and it may go even up to October.
We'll have to wait till September to see.
Yeah, so many other weekly report will come, and ultimately they will take a call on that, how they are going to move.
And the US Fed Chairman Jerome Powell did say, you know, he said that it can happen, but there was never any, you know, confirmed or any firm, you know, confirmation that yes, we will start the...
See, basically any kind of policy decision, if it backfires, it is very painful.
Yes.
Best example is Japan right now. After 17 years, they had experimented again. And that also only 25 basis points. And that was not able to digest because the kind of
tumble down effect it had all over the world.
And we don't know. Now, you know, no one knows that exactly what is the value which is there in total and how many stakeholders are going to get affected because of that. So that's why when in integrated economy we look upon, it is not that you simply take a decision because you are now a balancing factor for so many others also.
Right.
So you have to take care.
अपनी चर्चा हम यूरोप की ओर ही रखना चाहेंगे विजय जी और यहां पर समझना चाहेंगे आपको यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विशेष रूप से फ्रांस में जो ओलंपिक चल रहे हैं एक बड़ा आयोजन माना जाता है अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा पेरिस ओलंपिक किस रूप में जाता दिख रहा कई सारे नए प्रयोग वहां हुए हैं आपने प्रयोग की चर्चा की तो पेरिस में फ्रांस ने जो प्रयोग किया है वह आने वाले दिनों में क्या दर्शाने वाला है कैसे आकलन कर रहे हैं उसका
देखिए
अर्थव्यवस्था की दृष्टि से
वास्तव में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ही है और देखिए जितने भी चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय खेल हो या वैश्विक खेल हो जैसे ओलंपिक की बात हम कर रहे हैं ये जितना ही इंक्लूसिव होता चला जाता है उतनी उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है आप जब दूसरे देश आपके यहाँ आते हैं अतिथि बन के आते हैं खेलते हैं रहते हैं 10 से 15 दिन तक की रहती है अर्थव्यवस्था तो जाता ही है आगे आने वाले टाइम में जब आप नए नए प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग अगर वह सफल होता है तो उसको लोग फिर फॉलो करते हैं और जब फॉलो करते हैं तो वहां पे आप एक बड़े कह सकते हैं अनुभवी की तरह उभर के आते हैं और आपके यहां से व्यापार संबंध आगे बढ़ता है
जी।
तो आप मान के चलें इसे कि इस कि आयोजन से लेकर जो आयोजन के पहले की तैयारी आयोजन और आयोजन के बाद ये तीनों स्तर पे इस जो कह सकते हैं कि जो अभी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है उसमें एक बहुत मरहम का काम कर रहा है और ये इकोनॉमी को एक थोड़ा सा कह सकते हैं राहत भी दे रहा है अदरवाइज सबसे बड़ा अगर ग्लोबल इकोनॉमी में आज के डेट में टेंशन है वो है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट
जी जी जी
बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे कई कंट्री इन्वॉल्व हो चुके हैं
जी
और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सिर्फ फ्यूल पे ही नहीं इवन सीरियल्स पे फूड ग्रेन्स पे बहुत से फैक्टर पे पड़ रहा है तो ह्यूमन लाइफ इफेक्टेड होता है और इससे बड़ा एक और फैक्टर है सबसे बड़ा खतरा जो अभी ग्लोबल है वो है क्लाइमेट का और ये क्लाइमेट में कह सकते हैं कि आग में घी का काम कर रहा है आप जब उलझते हैं और आप जब विस्फोटक इस्तेमाल करते हैं वो क्लाइमेट को अभी आप देख चुके हैं कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बदल रहा है और अगर टेम्परेचर बदलता चला गया तो वो पूरे कह सकते हैं कि जीव मात्र के लिए ही खतरनाक
हो आइए आगे बढ़ते हैं
The unique registered investor base of National Stock Exchange or the NSE has crossed the 10 crore mark for the first time. The investor base has seen more than 3 times jump in the last 5 years, facilitated by rapid growth in digitization, rising investor awareness, financial inclusion and sustained market performance. The 10 crore registered investors have a median age of about 32 years, with 40% of them being younger than 30 years. Nearly one in five investors today are females. Vijayaji, what is your first comment on the fact that 10 crore mark has been crossed and, more importantly, that the median age is 32 years? So, I mean, 40% of them are, you know, younger than 30 years of age.
That is a very happy figure for a country at large. And why I'm saying this, because two reasons. One reason is that young generation from the beginning itself is attaching to the investment sites, capital formation and direct participation. Second is that when you go, this is a very good sign of increasing disintermediation in the financial market. When I use the word disintermediation, one is that intermediary where the deposit ultimately goes to banking system and banking system take it to the market. Whereas disintermediation talks about directly investor is taking risk in that. So this risk appetite, increasing risk appetite is my second factor. That also among the young one, certainly India should celebrate this and India should make it that when this, and I'm sure this 10 crore, how much time it has taken to reach that 10 crore, I think half of that time or lesser than that, lesser than half of that will take it to reach to 20 crore or more than that, because I know this momentum has been now on.
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में खुशियों के मौके बार बार उभर कर आ रहे हैं और ये भी मिठाई खाने खिलाने का मौका कि 10 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर गए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, हम यानी हमारे निवेशक। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव सम्मिलित है।
Moving on to commodities, oil prices edged higher today on course for a weekly gain of more than 3% as U.S. jobs data eased demand concerns while fears of a widening West Asia conflict persisted. In the global crude market, Brent crude was trading 0.51% higher at $79.56 per barrel. Meanwhile, WTI crude was also up 0.63%, trading at $76.67 per barrel when reports last came in.
यहाँ पर विजय जी, तेल के दाम पर आने वाले दिनों में क्या रहने के आसार हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे कि तेल किस दिशा में जाता दिख रहा है आपको?
तेल देखिए, मैं ये विश्वास में रहता हूँ कि तेल जो है अब एक रेंज बाउंड रहेगा। थोड़े से ये जो कन्फ्लिक्ट जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसका असर तो होता ही है और होगा भी, खास करके अभी जिस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच की स्थिति बन रही है उसमें थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी तेल का अब वो जैसे पहले था कि अंधाधुंध ऊपर चला जाएगा, वो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अल्टरनेटिव जो सोर्सेस होते हैं, जो एक दूसरे तीसरे सोर्सेस हैं, चाहे बायोफ्यूल की बात करें, सोलर की बात करें, ये सब अब इतने एक्सपेरिमेंट में आ चुका है कि कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड खत्म।
आइए चलें सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक समाचार तैयार किए जाने तक थोड़ी तेज दिख रही थी। शाम 7 बजे के आसपास 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.19% बढ़त के साथ 69,910 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी भी थोड़ी सी, मामूली बढ़त ही सही, लेकिन थोड़ी सी बढ़त 0.07% की तेजी के साथ 80,890 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे सोने चांदी में, विशेष रूप से सोने में हमने काफी तेजी देखी हाल के दिनों में और सोना एक अच्छा यानी रिटर्न देने वाला कह लीजिए कमोडिटी बन के उभरा है भारतीय बाजार में, कैसा दिख रहा है? बहुत संक्षेप में,
सोना ऑलवेज जी बस अट्रैक्टिव
जी, यही श्रोताओं की ओर से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।
धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices, Sensex and Nifty surge over 1%. NSE crosses record 10 crore unique registered investor base and oil prices set for 3% weekly gain. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.
Market Mantra. कर।